रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी नेपाल की जमीन पर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सहित 93 लोगों के खिलाफ दुरुपयोग के मामले में विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया। 57 अरब रुपए से अधिक लागत वाली 81 किलोमीटर लंबी मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना के निवेश को लेकर निवेश स्वीकृत करने का बोर्ड का निर्णय। स्रोत की कमी के कारण संचालन में न आ पाने वाले आधारभूत अस्पतालों को आगामी श्रावण में लाया जाएगा संचालन में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी अफ्रीकी महाद्वीप के 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अफ्रीकी यूनियन ने जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने पतंजलि योगपीठ और आयुर्वेद कंपनी नेपाल की जमीन के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सहित 93 लोगों के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। आयोग ने इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल सहित 93 लोगों से 18,58,50,000 रूपये की वसूली की मांग की है। ये जानकारी आयोग के प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौड़ेल ने दी। काबरे प्लांचो के नागार्जुन स्थित सागा महेंद्र ज्योति में कंपनी संचालन के लिए निर्धारित सीमा से अधिक जमीन खरीदी गई। आरोप है कि जमीन कम मूल्य पर खरीदकर अधिक दाम पर बेची गई। कंपनी के संस्थापक सदस्य सालीग्राम सिंह पर भी आरोप है कि उन्होंने कंपनी के नाम का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारियों से मिलीभगत से जमीन खरीदी, जो भूमि संबंधी आयन 2021 के विरुद्ध है। आरोप पत्र दायर होते ही नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल का सांसद पद स्वतः निलंबित हो गया है। भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 के तहत भ्रष्टाचार या आपराधिक मामले में आरोपित होने पर सार्वजनिक पद धारक का पद स्वतः निलंबित हो जाता है। नेपाल रौतहट जिले के प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद है। मामले से संबंधित दस्तावेज संघीय संसद सचिवालय को भेजे जा चुके हैं। अब विशेष अदालत में मामले की सुनवाई होगी। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी नेपाल की जमीन से जुड़े मामले में स्वयं को निर्दोष बताया है। रौतहट जिले से काठमांडू लौटते समय आज सिमरा विमानस्थल पर पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई अनुचित राशि नहीं ली है और न ही किसी मंत्री या अन्य को गलत कार्य करने के लिए दबाव डाला है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि उनके खिलाफ पूर्वाग्रह के आधार पर षड्यंत्र रचा गया है। दलों और सभामुख के बीच बार बार की गई चर्चा और प्रयासों के बावजूद सहमति न बन पाने के कारण प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक भी कार्यसूची में प्रवेश किए बिना स्थगित कर दी गई। बार बार समय बदलने के बाद शाम को ही बैठक शुरू हो पाई, लेकिन शुरुआत में ही प्रमुख प्रतिपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा खड़े होकर अवरोध पैदा करने के बाद सभामुख देवराज घिमरे ने अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की। बैठक में विपक्षी दलों नेकपा माओवादी केंद्र, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी आदि के सांसदों ने खड़े होकर विरोध जताया। विजिट वीजा प्रकरण में गृह मंत्री रमेश लेखक की संलग्नता का आरोप लगाते हुए विपक्षी दलों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। इसी मुद्दे पर विपक्ष पिछले जेठ 12 से बैठकों को अवरुद्ध कर रहा है। इससे पहले प्रतिनिधि सभा में चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए सभामुख देवराज घिमरे ने विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के प्रमुखों तथा मुख्य सचेतकों के साथ चर्चा की थी, लेकिन दोनों पक्ष अपने अपने रुख से पीछे नहीं हटने के कारण बैठक सुचारू रूप से आयोजित नहीं हो पा रही है। प्रतिनिधि सभा की बैठक सुचारू रूप से नहीं चल पाने के कारण सरकार के आगामी आर्थिक वर्ष के बजट पर चर्चा नहीं हो पाई है। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र ने संसद के गतिरोध अंत करने के लिए सृजनात्मक और रचनात्मक ढंग से आगे बढ़ने का निर्णय किया है। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड निवास में आज हुए पदाधिकारी बैठक ने यह निष्कर्ष निकाला कि विजिट वीसा के नाम से नागरिकों को ठगे जाने के विषय पर जांच करना आवश्यक है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में आर्थिक वर्ष 2082-83 के राजस्व और व्यय के वार्षिक अनुमान पर सामान्य चर्चा हुई। बैठक के शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने देश के समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक ज्येष्ठ 23 गते दोपहर 1:15 के लिए बुलाई गई है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा ने पूर्व राजा समर्थकों के प्रदर्शन को वर्तमान परिस्थितियों में निरर्थक बताया है। आज जनकपुर धाम विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बात करते हुए सभापति देउवा ने कहा कि राजतंत्रवादियों को आंदोलन पहले ही विफल हो चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करना तर्कहीन है और विपक्षी दलों से संसद का अवरोध न करने का आग्रह किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमंत्री रमेश लेखक ने विपद प्रतिकार्य के पूर्व तैयारी को दुरुस्त और मातहत के निकाय को तैयारी अवस्था में रहने के लिए निर्देश किया है। उन्होंने 7 प्रदेशों और 77 जिलों के प्रमुख जिला अधिकारी सहित सुरक्षा समिति के साथ विपद पूर्व तैयारी के विषय पर आज वर्चुअल बैठक में कहा कि विगत के जैसे लापरवाही न करके सावधानी पूर्वक तैयारी में जुटने के लिए सभी को निर्देश किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने स्रोत अभाव के कारण संचालन में नहीं आ पाए आधारभूत अस्पतालों आगामी श्रावण महीना से संचालन के लिए तैयारी आगे बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने आधारभूत अस्पतालों को निर्माण तथा संचालन के लिए करीब 1 अरब बजट व्यवस्थापन किया है, इसलिए अब आधारभूत अस्पतालों को संचालन में सहज होगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने मंत्रालय के नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डॉ कृष्ण पौड़ेल के संयोजकत्व में कार्यदल गठित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अफ्रीकी यूनियन ने चिंता जताई है। यह प्रतिबंध अमेरिका की नई यात्रा नीति का हिस्सा है। इसमें नाइजीरिया, म्यांमार, इरिट्रिया, कीनिया, तांजानिया, सूडान और 4 जैसे देशों के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये देश अमेरिका की सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करते हैं और उनके पास आतंकवाद रोकथाम या आव्रजन डेटा साझा करने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा इन देशों से अवैध आप्रवासन और वीजा ओवररस्ट की मामले में अधिक देखे गए हैं। अफ्रीकी यूनियन ने इस कदम को भेदभावपूर्ण और अफ्रीका के खिलाफ पूर्वाग्रह बताया है। कुछ अफ्रीकी नेताओं ने इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि यह सामूहिक दंड जैसा है और इससे आर्थिक व राजनयिक संबंध प्रभावित होंगे। नाइजीरिया और 4 जैसे देश जो अमेरिका के साथ सुरक्षा सहयोग में अहम भूमिका निभाता है इससे नाराज है। कीनिया जैसे दोस्तों ने कहा है कि वे अमेरिका से इस मुद्दे पर वार्ता करने की कोशिश करेंगे। अफ्रीकी यूनियन ने अमेरिका से इस नीति पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पतंजलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कंपनी नेपाल की जमीन पर पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल सहित 93 लोगों के खिलाफ अख्तियार दुरुपयोग के मामले में विशेष अदालत में मामला दर्ज किया गया। 57 अरब रुपए से अधिक लागत वाली 81 किलोमीटर लंबी मुक्तिनाथ केबल कार परियोजना के निवेश को लेकर निवेश स्वीकृत करने का बोर्ड का निर्णय। स्रोत की कमी के कारण संचालन में न आ पाने वाले आधारभूत अस्पतालों को आगामी श्रावण में लाया जाएगा संचालन में। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप के 7 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अफ्रीकी यूनियन ने जताई चिंता। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।